भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। आज भट्टी का 60वां दिन है। अनेक प्रकार के सोमान का अभ्यास करते हुए आज हम 60वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, और आज का सोमान है, मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। जीवन में उतराई चढ़ाई चलती रहती है। इन दो शब्दों के इर्द गिर्द ही हमारा पुरुषार्थ अप डाउन होता रहता है, व्यर्थ और समर्थ। जब जब स्मृतियाँ समर्थ रहती है तो स्थिति भी शक्तिशाली रहती है, और जब व्यर्थ को हम पकड़ लेते हैं तो स्थिति भी डावाडोल होने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी समर्थ स्मृतियों की रोशनी हमारे जीवन को प्रकाशमान बनाए रखती है। अगर समर्थ संकल्पों का हम लंबे समय से चिंतन करते रहते हैं, समर्थ संकल्पों का स्टॉक इकट्ठा करते रहते हैं, उनसे हमारी प्रीत बढ़ती रहती है, तो धीरे धीरे व्यर्थ का अंधकार अपने आप विदाई ले लेता है, उसको भगाना नहीं पड़ता। तो सभी जो सुना, कितने सोमान सुने, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, दूसरा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो इन दोनों सोमान की स्मृति में स्थित होकर रहेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि स्वयं भगवान की वाणी ऊपर से आ रही है और मैं वो हूँ, व्यर्थ के किचड़े को समाप्त करने वाला मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, परमात्मा शक्तियों को स्वयं में समाने वाली मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और इसी स्मृति में खड़े रहेंगे कि सामने हमारे विश्व का ग्लोब है और हमारे सिर पर सर्वशक्तिवान छत्रछाया है, वो ज्ञान सूर्य हमारे सिर पर, महसूस कीजिए कि वो खड़ा है और उसकी सारी की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा, सूर्य बनकर मेरे सिर पर खड़ा है और उसकी सारी की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। और ये मेरा शरीर भी सारा सूर्य की भांति बदल गया है, सूर्य की तरह तप रहा है। आत्मा और शरीर दोनों सूर्य की तरह से रोशनी, चारों तरफ प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे सामने विश्व का ग्लोब है, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से परमात्म शक्तियों की तेजस्वी किरणें निकलकर विश्व को ग्लोब को जा रही है। सभी हाथों को ऐसे करेंगे जैसे विश्व के ग्लोब को परमात्म शक्तियों की किरणें जा रही हैं। संपूर्ण पवित्रता विश्व के ग्लोब में समाती जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों में परमात्म प्योरिटी, परमात्म पावर्स तीव्र वेग से समाती जा रही है। पेड़ पौधे पशु पंछी विश्व की समस्त आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों का सागर ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। मेरा शरीर जैसे आत्मा में तब्दील हो गया है। शरीर शरीर नहीं रहा भाई, बल्कि आत्मा की भांति शरीर भी चमक रहा है। उंगलियों से, आंखों से, सिर से, मुंह से, हाथों से, छाती से, पेट से, पांव से, टांगों से लाइट ही लाइट निकल रही है। मैं परमात्म शक्तियों का शक्तिशाली पुंज हूं। चारों तरफ से परमात्म शक्तियों की रोशनी विश्व के ग्लोब को जा रही है। विश्व का ग्लोब भी परमात्म शक्तियों से समर्थ हो गया है। संपूर्ण पवित्रता समाती जा रही है। ओम शांति। हाथों को रफ करके चेहरे पर मलेंगे, बैठ जाएंगे। अभी हर ब्राह्मण चाहता है कि हमारी स्थिति हमेशा समर्थ बनी रहे। समर्थ अर्थात शक्तिशाली, पावरफुल, सदा जागती ज्योत। समर्थ स्थिति बनाए रखने के लिए बाबा ने अनेक प्रकार की युक्तियां हम सबको बताई हुई हैं, जो समय समय पर हम चिंतन भी करते रहते हैं, उसको स्वरूप में लाने का प्रयास भी करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं हमारे मन में मन के किसी कोने में जो व्यर्थ बैठा रहता है, जैसे उसको कोई माहौल मिलता है, तो धीरे धीरे समर्थ स्थिति हमारी धीरे धीरे नीचे आने लगती है। फिर बाबा हम सबको महावाक्य सुना के अच्छे अच्छे सोमान में स्थित करा के हमारी स्थिति को एकदम ऊंच ले जाने के लिए बाबा हमें महावाक्य से श्रृंगार हमारा करते रहते हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में चलना जो है, बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है, आज की मुरली में है, तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अगर तुम्हें पवित्रता के कारण सहन करना पड़ता है तो बड़ी बात नहीं है। चलते चलते बच्चे अपवित्र बन पड़ते हैं, अर्थात अपना कत्ल कर देते हैं। अपना कत्ल करना अर्थात भविष्य 21 जन्मों की राजाई को कत्ल कर देना। तो साधारण महावाक्यों को कई बार हम साधारणता से ले लेते हैं, लेकिन बाबा के महावाक्य कई बार अगर हमको एकाग्रता पूर्वक हम उसे सुनने का प्रयास करें तो अंदर जो हमारा मन निष्क्रिय हुआ रहता है वो एकदम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि शब्दों में भी जान है। शब्द भी सजीव अवस्था को बनाए रखने के लिए हमें शक्ति बरते हैं। वो शब्द निर्जीव नहीं है, शब्दों में जान है, ताकत है, बल है। इसलिए ऊंचे ऊंचे सोमान पर जब हम स्थित होते हैं तो आंतरिक चेतना हमें झिंझोड़ देती है एकदम कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। एकदम जागरूकता आती है स्वयं के प्रति, हमें अपने कर्तव्यों का बोध होने लगता है कि इतना टाइम हमने ऐसे गवा दिया, किस ऊंची नज़र से हमको भगवान देख रहा है, और हम फिर व्यर्थ के चक्कर में चले जाते हैं और अपनी शक्तियों को खो देते हैं। लेकिन बाबा रहम का सागर है, वो फिर हमें बार बार मीठे बच्चे संबोधित करते हुए हमारी सब प्रकार की कमजोरियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर हमें जो हम नीचे गिर जाते हैं उठाकर हमें सिंहासन पर बिठा देते हैं, तख्त पर बिठा देते हैं, ताकि हम फिर अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएं। जो हमें करना चाहिए था उसको हम करने के लिए एकदम फिर सामर्थ्य अपने आप में भर लें, योग्य बन जाएं। तो शब्दों में भी ताकत होती है, इसलिए आपने देखा होगा जब कई दफ़ा बॉर्डर पर जाते हैं लोग देखने के लिए, तो देखने वाले जो होते हैं उनमें उन सुरक्षा प्रहरियों से भी ज़्यादा बल हो जाता है, जितना उनमें भी नहीं होता है जो वहाँ लेफ्ट राइट करते हैं देश की रक्षा पर, 24 घंटे अपना पूरा न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो देखने के लिए जाते हैं केवल आधे घंटे के लिए, और उस समय जो कमेंट्री होती है वो तो इस संसार की हद की है, तो उसकी उस समय जो अवस्था होती है तो देखने लायक बनती है वो। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम भी युद्ध के मैदान पर हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती रहती है। जब किसी के सामने दुश्मन आता है तो उस पर दया नहीं की जाती है, विशेषकर वो दुश्मन जो देश के लिए देशद्रोही होता है। तो माया भी क्या है, वो ब्राह्मणों के लिए जैसे द्रोही है, और हम सब विद्रोही हैं माया के खिलाफ। इसलिए निर्दयी होकर भी हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए, माया को आने की मार्जन नहीं देनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कई ऐसी छोटी छोटी बातें आती रहती हमारे जीवन में जिनको हम सोचते हैं कि ये तो चलता है, चल थोड़ा चलना चाहिए, शक्तिशाली बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो व्यर्थ आता ही है, आखिर में बनेंगे, अंत में बनेंगे, बाबा ने बोला है, ये उतराई चढ़ाई तो चलती रहेगी लेकिन अंत में तो शक्तिशाली विजयी आत्मा बन जाएंगे। तो ये भी हम अपने मन में ऐसे व्यर्थ संकल्पों को स्थान देते रहते हैं और हमारी स्थिति धीरे धीरे फिर कमज़ोर हो जाती है, और वो एक संस्कार के रूप में काम करती है। तो आज का जो विषय है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आज के जो महावाक्य मुरली के हैं बाबा के शॉर्ट में, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण वरना कोई मासी का घर थोड़े ही है, चलते फिरते हाँ हो जाते हैं, बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो, ये तो तुम्हारे ऊपर है, मनाया यहाँ थोड़ी भी मार्जिन नहीं है, चलते फिरते माया जोर से थप्पड़ मार देती है, बॉक्सिंग है ना, एक ही गुस्से से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, मर पड़ते हैं, ऐसे भी नाजुक हैं, भूल पर तो पछताना होता है ना, तो इस ज्ञान मार्ग में नाजुकपना नहीं चलेगा, एकदम स्ट्रिक्ट, कोई मार्जिन नहीं है इधर। तो अपने आप को समर्थ हमेशा बनाए रखने के लिए जो आज के महावाक्य हैं, सोमान कि मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाली समर्थ आत्मा हूँ, तो आज ही जो भी हमने व्यर्थ में समय गवाया है थोड़ा सा पछतावा कर लेना। आज बाबा ने बोला ना साकार मूल्य में कि क्यों व्यर्थ हमने गवा दिया बहुत, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठना उस पछतावे को, उससे हमने सीख लिया लेकिन आगे के लिए नहीं। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से व्यर्थ के कीचड़े को समाप्त कर दो, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा समझते हो, सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ, जो समर्थ होगा वह व्यर्थ के कीचड़े को समाप्त कर देगा। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात व्यर्थ का नाम निशान नहीं, अगर हमारे जीवन में व्यर्थ आता है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है। सदा ये लक्ष्य रखो कि मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाला समर्थ हूँ, जैसे सूर्य का काम होता है कीचड़े को भस्म करना, अंधकार को मिटाना, रोशनी देना, इसलिए सूरज रे जलते रहना, उसका काम ही जलना है, दूसरों को रोशनी देना, कीचड़े को भस्म करना। तो इसी रीति मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात व्यर्थ के कीचड़े को समाप्त करने वाले अर्थात अंधकार को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान व्यर्थ के प्रभाव में कभी नहीं आएगा, अगर प्रभाव में आ जाते तो कमजोर हुए। परसों का स्लोगन था ना प्रभाव वाला, क्या स्लोगन था, एक बाप के ऊपर प्रभावित होने वाले और किसी के ऊपर भी आप प्रभावित नहीं हो सकते, अगर प्रभाव में आ जाते तो कमजोर हुए, बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे कमजोर, ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता किसे, बाबा को, कुछ भी हो लेकिन सदा स्मृति रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसा नहीं समझो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, घरों में अकेले रहते हैं ना, तो बाबा कहते ऐसे नहीं समझो मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे नहीं समझो मैं अकेला क्या कर सकता हूं, एक भी अनेकों को बदल सकता है, तो स्वयं भी शक्तिशाली बनो और औरों को भी बनाओ। जब एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते, जैसे वो चिड़िया की कहानी है, जंगल में आग लगी, बुझाने के लिए चोंच से सागर से पानी ले जा, मना आशावादी कितनी है, वो हिम्मत नहीं हारी उसने, तो बाबा कहते एक दीपक अंधकार को मिटा सकता है तो तुम क्या नहीं कर सकते हो। तो सदा वातावरण को बदलने का लक्ष्य रखो, विषय परिवर्तन बनने के पहले सेवा केंद्र के वातावरण को परिवर्तन कर पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तो हमारा जो लौकिक में जहां हम रहते हैं वो भी सेवा केंद्र है। तो ये आज के महावाक्य हैं, तो अभी हम 12 बातें देखेंगे समर्थ बनने के लिए, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन फिर भी अगर ये सारे दिन हम इन पर अपना चिंतन करते रहें, मन बुद्धि को इन बातों में इन्वॉल्व रखें, बिजी रहें, तो भी हम समर्थ बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी खड़े हो जाइए समर्थ बनने के लिए। तो सोमान का हमको अभ्यास भी नए नए तरीके से करना है, जहाँ भी हम रहते हैं अकेले करना और आसान हो जाता है, अगर थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा सा लक्ष्य हो, बाबा ने बताया ना लक्ष्य, विश्व को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखना है और उससे पहले स्वयं को परिवर्तन करना। तो जो योग के अभ्यास होते हैं वो हमें स्वयं ही नई नई विधियाँ क्रिएट करनी है। कुछ दिन पूर्व स्लोगन था ना, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त करो, किसी भी विधि से, वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो सारी मुरलियों में मिले हमको। जब हम एकांत में बैठेंगे बाबा टच कराएगा अपने आप, नई नई विधियाँ हमें टच होंगी। इसलिए हर चीज़ में नवीनता चाहिए। कल के मुरली में था नवीनता के लिए, चारों सब्जेक्ट में नवीनता, और नवीनता ही आगे बढ़ने का एकमात्र शक्तिशाली साधन है। अगर नवीनता नहीं है तो कुछ दिन पुरानी विधियों पर चलने से धीरे धीरे मन बोर हो जाता है। इसलिए कुछ भी तरीके से नई नई विधि हमको ढूंढ के ही करना है। तो अभी हम देखेंगे समर्थ बनने के लिए 12 बातें। आज का स्लोगन क्या है? संसार में सबसे अधिक संपत्तिवान कौन है? जो ज्ञान से धनवान हो। संसार में कहा जाता है पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है उसको सब सलाम करते हैं, कुछ भी कर सकता है धन बल के आधार पर। इस ब्राह्मण जीवन में भी धन की बहुत आवश्यकता है। कौन सा धन? ज्ञान का धन। जितना हम ज्ञान धन से मालामाल होंगे, संपत्तिवान होंगे, तो माया के अनेक प्रकार के जो हमारे अंदर प्रवेश करने के तरीके होते हैं वो हमारे अंदर आ नहीं पाएगी। क्योंकि धन को इतना अंदर हम अपने अर्जित कर लिया है कि जो अज्ञानता का अंधकार है वो धन की रोशनी के आगे ठहर नहीं सकता। इसलिए लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? धन की देवी है वो। दिवाली के दिन उसका विशेष रूप से आह्वान करते हैं। तो हमारे जीवन में भी लक्ष्मी हमेशा आती रहनी चाहिए। कौन सी लक्ष्मी? ज्ञान धन की लक्ष्मी, धन की देवी। तो धन में, ज्ञान में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। केवल हमको ये नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा योग कर लें। अगर बिना ज्ञान के योग करते तो उसमें सामर्थ्य नहीं होता, ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञान तो हमारे ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे जितना ज्ञान होगा योग लगाने की जरूरत नहीं है, योग अपने आप लगता है। वैसे भी सभी अनुभव करते हैं, जब भी योग में बैठते हैं तो संकल्प तो कोई ना कोई चलते रहते हैं। कौन से संकल्प चलते हैं? जो हमने मन में भर के रखे हुए हैं, जिनकी हमको नेचुरल आदत सी हो गई है। चाहे वो व्यर्थ संकल्प हैं, चाहे वो साधारण संकल्प हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे वो इम्प्योरिटी के हैं या प्योरिटी के हैं, जो हमने अपने अंदर संस्कारों का निर्माण करके रखा है वो संकल्प अपने आप स्वतः चलते हैं, चलाने नहीं पड़ते हैं। अगर हमने ज्ञान धन की संपत्ति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करके रखा है तो हमारे संकल्प भी वैसे ही चलेंगे। क्योंकि संकल्प सुमान में स्थित होने के लिए तो संकल्प याद करना पड़ता है, उसमें भी लंबे समय तक स्थित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो नेचुरल संस्कार हमारे हो गए हैं वो अपने आप हमको स्मृति में आते हैं। जैसे मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाला समर्थ आत्मा हूँ। अब ये केवल एक सुमान है, लेकिन ये समर्थ तब बनेगा जब हमने समर्थ संकल्पों का चिंतन किया है। तो सबसे पहली बात है ज्ञान धन की संपत्ति को हमको अर्जित करना है। 12 एस देखेंगे। पहला एस है संपत्तिवान भव। हमें ज्ञान धन की संपत्ति से अपने आप को परिपूर्ण करके रखना है। ज्ञान एक खजाना है, जिस खजाने की कमी नहीं होनी चाहिए। जितना ये खजाना हमारे पास होगा उतना हम स्वयं को समर्थ अनुभव कर सकते हैं। जिसके पास जितना धन होता है उसके चेहरे पर अपने आप दिखाई देता है, उसको नशा रहता है कि मेरे पास है। हाँ, अगर समय आने पर नोटबंदी होगी तो सारा ऐसे चला जाएगा वो। इसलिए उसको यूज़ करना है, उसको बढ़ाना है। ऐसे ना पड़ा रहे कि हाँ मेरे पास तो ज्ञान है, लेकिन समय पर वो काम ही नहीं आए तो उसका होते हुए कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए ज्ञान धन को हमको हमेशा बढ़ाते रहना। और ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे कैसे बढ़ेगा ज्ञान धन? पढ़ना, रिफ्रेश करना, बार बार रिफ्रेश करते रहना। तो सबसे पहले बात उसमें पढ़ना ज्ञान को, अर्थात मुरलियों का अध्ययन करना। दूसरा सुनना, पढ़ने से ज़्यादा महत्व सुनने का भी और ज़्यादा है। कई बार किसी का जो प्रश्न होता है वो सामने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूछते रहते हैं, सामने वाला सुना रहा है एक्यूरेट, चार लोग बैठे हैं, लेकिन जिसको सुनना है वो प्रश्नों की झड़ी लगाता जा रहा है, सुन नहीं रहा ठीक से, लेकिन जो दो लोग बाजू में बैठे वो चुपचाप सुन रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन जो समस्या लेकर आया हुआ है उसके प्रश्न तभी बने हुए हैं क्योंकि मानसिकता पूछने की है। कई बार ऐसे होता है प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको समाधान कोई सामने वाला बता रहा है लेकिन फिर भी वो अपने प्रश्न ही बताते जा रहे हैं, प्रश्न ही बताते जा रहे हैं। पता तो हम सबको पता है कि इस समस्या का समाधान कैसे होता है, हमको पता है कि हमको ये वाला व्यर्थ है, छोड़ना चाहिए, और हमको पता है ऐसे छूटेगा, लेकिन फिर भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पढ़ना, सुनना, सुनाना, चर्चा करना, चिंतन करना, लिखना, यह है संपत्ति को अर्जित करने के तरीके। रिवाइज करना, दोहराना आपस में। बिजनेसमैन कैसे अपने धन को बढ़ाता है, उसी तरह बाबा कहते तुम हो रूहानी बिजनेसमैन, व्यापारी हो, सौदागर हो, रत्नागर हो, तो अपने संपत्ति को, ज्ञान की संपत्ति को बढ़ाने के तरीके हमको खुद ही ढूंढने। हम देखते हैं कई मधुबन वाले इतने पुराने हैं, लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको लिखने की आदत बनी हुई है, कितनी बड़ी बात है वो। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लिखने से कभी बोर हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा अभी भी कॉपी पेन डायरी लेके हम छोटे लाल भाई को देखते हैं, इतने सालों से एक रस अवस्था, वो डायरी पेन अभी भी लिखने से, माना मुरली मीठे बच्चे वरदान सारा लिखेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट लिखेंगे, क्लास में जाएंगे किसी की तो वहाँ भी लिखते रहेंगे। तो ये है ज्ञान धन के खजाने को अर्जित करने की विधि। कभी मन को बोर होने नहीं दिया, लेकिन हम क्या होता है डायरी लिखते 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 फिर छोड़ते छोड़ देते हैं बीच में, भले कागज़ अलग से रखते हैं लेकिन वो कागज़ कहाँ गुम हो जाते पता नहीं चलता बाद में। तो ये ज्ञान को, ज्ञान से हमको प्यार करना है। तो पहली बात है, पहला ऐसा है संपत्तिवान बनने के तरीके हमको खुद ही तलाशने हैं ताकि हम हमेशा अपने आप को समर्थ अनुभव कर सकें। दूसरी बात है, समर्थ बनने का दूसरा तरीका है स्थान। हमको स्थान भी बहुत समर्थ बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं स्थान। संसार में कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जो शक्तिशाली बनाते हैं? मंदिर, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, शक्तिशाली स्थान होते हैं। तो हमको भी कौन कौन से स्थानों पर जाना है? हाँ जी, चार धाम। इस स्थान के, संसार के जो स्थान है स्थूल वतन के, चार धाम के, तो रोज चारों धाम की परिक्रमा करनी है और वहाँ उन स्थानों का हमको अनुभव करना है। संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान कौन सा है? मधुबन में भी, चार धाम में भी, शांति स्तंभ में भी, जहाँ भी खड़े हो जाओ, जहाँ टावर ऑफ माइट लिखा हुआ है उस तरफ खड़े होकर देखना आप। तो हमें चार धाम का भी ये परिक्रमा करनी है। स्थान बहुत शक्तिशाली, बाबा क्यों कहते हैं कि आप बार बार ड्रिल करो, तो स्थान का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। और स्थान कौन सा है शक्तिशाली बनने के लिए? परम धाम, अपना घर। अपने घर में अपने आप ही शक्ति मिलती है, आराम मिलता है, तो अपने घर में बार बार जाने की प्रैक्टिस करनी है। और कौन सा स्थान है? सूक्ष्म वतन, बाबा के वरदानी हस्त अपने ऊपर अनुभव करने हैं। और कौन सा स्थान है शक्तिशाली बनने का? स्वर्ग। और कौन सा स्थान है? मंदिर भी हो गया, और गणेश का मंदिर आजकल चल रहा है, भाइयों का बड़े दिनों के बाद दिन आता है, गणेश का तो आ गया, आज देवियों के तो बहुत होते हैं। तो और कौन सा स्थान है शक्तिशाली बनने का? शमशान घाट, एकांत, वहाँ बैठो जाके देखो कैसे शक्तिशाली बनेंगे। तो यह है दूसरी बात है स्थान, बाबा की शतरछा है। निरंतर अगर हम अनुभव करते रहेंगे तो सचमुच आप एक नक्की चक्कर मारो केवल इसी संकल्प के साथ, कुछ नहीं सोचने का, ये इसी संकल्प के, बाबा की शतरछाया के नीचे मैं चल रहा हूँ बस, और कुछ ना आजू देखना ना बाजू देखना है, सीधा चक्कर मार के आ जाओ तो भी हम बहुत समर्थ बन जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा स्थान। तीसरा है संघ, कंपनी। हमारा संघ कैसा है? बाबा कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे, तो तुम बच्चों को सत्य का संग मिला है, सत्य के संग में रहेंगे तो हमेशा पावरफुल रहेंगे, क्योंकि सत्य कैसा है? अविनाशी है। ये सत्य कैसा है? कल्याणकारी सत्य है। ये सत्य कैसा है? हमको शक्तिशाली बनाने वाला है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप का संग मिला है, तो बाप की कंपनी में रहेंगे, उसके संग में रहेंगे, तो बाकी माया के संग के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। तो तीसरी बात है, तीसरा ऐसा है संग। चौथा है श्रेष्ठ आत्माओं का संग, ब्राह्मण आत्माओं का संग, बाबा का संग, और किसका संग, मुरली का संग, और क्लास का संग, संगठन का संग। हाँ, वो आएगा, भोजन भी आएगा आगे, भोजन से मुक्त होना है। शक्तिशाली संकल्पों का संग। तो तीसरा है संग, चौथा है और कौन सी चीज समर्थ बनाती है, स्नेह। बाबा कहते हैं बाप के प्यार में समा जाओ, पिछले संडे की मुरली में थी, लव में लीन हो जाओ। जहाँ स्नेह होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो जब माँ बाप के साथ में रहता है, माँ बाप के स्नेह में समा जाता है, तो उसको कोई प्रकार की चिंता नहीं रहती है, कोई कमजोरी अनुभव नहीं करता है, उसको छत्रछाया अनुभव होती है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने देखा, कुछ दिन क्या परसों, जो पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई, उसमें एक वीडियो आया, हमने देखा एक पिता है, उसके दोनों बच्चे बह जा रहे हैं, भारी फ्लड आ रहा है, पिता ने छलांग मार दी और वो भी बह रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों को पकड़ के ले आया। कितने बड़ी वो देखने वाला वीडियो था, इंस्पिरेशन था। तो अगर बाप का संग है, बाप की छत्रछाया है, बाप का स्नेह है, तो बाप का स्नेह जहाँ है वो हमको हमेशा सुरक्षित रखता है। बाकी सारे स्नेह संसार में कैसे हैं, डुबोने वाले हैं, सब में स्वार्थ समाया हुआ है, लेकिन ये निस्वार्थ स्नेह है, इसमें निश्चल प्रेम है, इस स्नेह में शक्ति है, जादुई शक्ति है। ये स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। काल की मूल्य में था, बाप तुम्हें क्या बनाते हैं, पत्थर बुद्धि से पार्श्व बुद्धि बनाते हैं। तो ये स्नेह जो है बहुत शक्तिशाली है। तो बाबा का स्नेह अनकंडीशनल है, कोई उसमें पक्षपात नहीं है। इतने लंबे समय से हम ज्ञान में चलते हैं, जो भी कमी कमजोरियां होती हैं बाबा उनको देखते नहीं है, फिर भी हमारे से स्नेह करते हैं। तो बाबा का स्नेह भी हमको शक्तिशाली बनाता है, हमारे में सामर्थ्य बढ़ता है, बल बढ़ता है, ताकत बढ़ता है। तो चौथा ऐसा है स्नेह। पांचवा है साधना। साधना हमको शक्तिशाली बनाती है। सारे दिन में अगर हम थोड़ा थोड़ा समय भी साधना करते रहें, और अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ, अच्छे अच्छे सोमान के साथ, तो साधना भी हमको शक्तिशाली बनाती है। और साधना के साथ साकाश, साकाश एकमात्र ऐसी चीज है, अगर हम अपने मन को साकाश देने के लिए, साकाश क्या चीज़ है वास्तव में, हमारे संकल्पों की उत्पत्ति से जो प्रकंपन निकलने वाले हैं, वाइब्रेशन निकलने वाले, वही साकाश है। चाहे हम नेगेटिव संकल्प करते हैं तो वो भी साकाश जा रहा है, किसी के प्रति हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सोचते ही वो साकाश पहुँच गया। तो साकाश भी एक स्वयं को शक्तिशाली बनाने का तरीका है, स्वयं को बिजी रखने का तरीका है। कल बताया था ना तीन बातें, बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन बिजी रहता है और बैंक में जमा करता है। तो सारे दिन में हमको भी साकाश देते देते थोड़ा थोड़ा हमको जमा करते रहना है, ताकि हमारी शक्ति कायम रहे, नहीं तो माया सूक्ष्म रूप से कहाँ प्रवेश कर जाती है पता ही नहीं चलता है। और पता तो चलता है जब शाम को हम पोता मेल देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम बह गए, ऐसे ही जहाँ हम अपने आप को रोक सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हमने मार्जिन रखने दिया व्यर्थ को आने का, तो सारी शक्तियाँ जैसे ध्वस्त कर देती है हमारे पुरुषार्थ को। हाँ जी, इन्वेस्ट करना, हाँ इन्वेस्ट करना उसको। तो ये पांचवा ऐसा है साधना। और नेक्स्ट है सुमान में स्थित रहना। सुमान की स्मृति, सुमान अर्थात हमें अपने कुल की स्मृति रहनी चाहिए। आज बाबा ने बोला ना, तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है, है ना, सफ़ेद कपड़े पहनना कोई मासी का घर नहीं है, हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, हमेशा पहन के रखो सफ़ेद कपड़े घर में भी, हमेशा सुनते रहेंगे, सब सुनाते रहेंगे लोग, बैज भी लगा के रखो, बैज के कितने 36 फायदे बताए थे। तो ब्राह्मण कुल की स्मृति, जिसको जिस कुल की स्मृति रहती है उसमें वो लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कोई राजपूत घराने का होता है तो उसका चाल चलन हाव भाव वैसे दिखाई देता है। कोई अपने आप को जो ठाकुर लोग होते हैं तो ठाकुर भी कैसे होते हैं, वो अपनी ठाकुरपना उनको दिखता है, उनके बातों में दिखता है, वो पूरा परिलक्षित होता है उनके चेहरे से। तो हम किस कुल के हैं, हम ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण कुल देवताओं से उत्तम है, चोटी है वो। तो हम अगर हमको ये भी स्मृति रहे कि मैं ब्राह्मण चोटी आत्मा हूँ, अपने सोमान की स्मृति में स्थित रहेंगे तो भी हम शक्तिशाली निरंतर अनुभव अपने आप को करते रहेंगे। और नेक्स्ट एस है, कितने एस हो गए, ये अभी 5-6 हो गया, कौन कौन से हुए, पहले सबसे पहले संपत्ति, दूसरा स्थान, तीसरा सिंह, चौथा स्नेह, पांचवा छठा स्वमान, नेक्स्ट है संगठन का बल। साधना के साथ आकाश जुड़ा हुआ है, अलग कर सकते हैं आप, आपको छुट्टी है। नेक्स्ट है संगठन का बल, अपने आप को संगठन के अंदर जरूर रखना है। हाँ, अकेले भी रहना है लेकिन संगठन का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कारों का परिवर्तन जो हमें पता चलता है वो संगठन के अंदर रह के पता चलता है, अकेले में अपने संस्कारों का पता नहीं चलता है। जब संगठन में दो चार आएंगे, कुछ हमको सुनाएंगे, तो हमको पता चलता है कि हम सुन सकते हैं, सुनने योग्य हैं, है ना, क्योंकि संगठन हमको हमारी कमजोरियों से भी अवगत कराता है। संगठन के बलिहारी है जो हमको अपनी कमजोरियों से अवगत तो करा रहा है कि हमको अपने अंदर इन कमजोरियों को छोड़ने का हमको शक्ति भरनी है, बल भरना है, तो संगठन भी हमको समर्थ बनाता है। इसलिए संगठन का बहुत बड़ा महत्व है। बाबा क्या कहते हैं, बन बन की काठी है, पूरी पूरी से तालाब भरता है। तो पुरुषार्थ के छोटे छोटे टिप्स हमको जो संगठन में मिलते हैं, कोई भी एक बात अगर हमको मिल जाती है वो हमारे पुरुषार्थ को जैसे चार चांद लगा देती है। पुरुषार्थ का एक नया मार्ग प्रशस्त हो जाता है, एक नया तरीका निकलता है, पुरुषार्थ हमारा सहज हो जाता है। पुरुषार्थ करने के लिए एक दो को देख के हम अपने आप ही हमको प्रेरणा आती है कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं जितने भी भाई बहने भी सुनाते हैं तो सब ने अनुभव किया, पहले कहाँ बोल पाते थे लेकिन अभी रोकना मुश्किल हो जाता है, कितना फर्क हो गया है, घंटी बार बार बजाते रहते तो भी नहीं रुकते। जैसे उस दिन संडे की क्लास में एक माता जी बता रहे थे कि बाबा की कमाल है, उनको लिखने पढ़ने बिल्कुल भी नहीं आता था लेकिन बाबा ने उनको पढ़ना सिखा दिया, तो लिखते भी थोड़ा थोड़ा भी, तो बाबा की मदद कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो सुनाते सुनाते माता जी इतना इतने सारे उन्होंने मुरली के पॉइंट बता दिए कि उतने हमको भी याद नहीं थे। तो माता कहती है कि हमारा तो बुद्धि का रूप बर्तन जैसे बाबा ने सोने का बना दिया, सचमुच हमने बोला सोने का नहीं तो डायमंड का ही लग रहा है पूरा। तो बाबा भी हमारे पर बलिहार हो जाता है अगर हम थोड़ा सा भी अटेंशन रखते हैं। तो ये थी संगठन का बल। नेक्स्ट है समय, समय देखना कौन सा चल रहा है और सारे दिन में कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय अच्छा है, अमृत वेला। दो टाइम, अमृत वेला और नुमा शाम, लेकिन तीसरा टाइम भी है एक, कौन सा, सवेरे 8 से शाम को 6 बजे तक, इसको भी अमृत वेला समझना है। कल बताया था ना डॉक्टर पूजा बहन जी ने, हैं जी, 9 से 5, क्योंकि हम सारे दिन में उसको दिन का समय समझ लेते हैं, अगर उसको भी हम अमृत वेला का समय समझ के चलते हैं तो स्थिति हमारी शक्तिशाली रहेगी, क्योंकि अमृत वेला तो कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि हम अमृत वेला दिन में कर लेंगे, वो भी हमको ठंडे नहीं हो जाना है। तो हमको समय की भी स्मृति रहनी चाहिए कि कौन सा समय चल रहा है। केवल एक ये संगम युग ही है जो जमा करने का युग है 21 जन्मों के लिए, है ना। तो समय नेक्स्ट है, कितने हो गए, 8 हो गए। नेक्स्ट है स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। स्लोगन था ना 4-5 दिन पहले, क्या स्लोगन था, मुरली में था, हाँ, बच्चे गलती कर देते हैं, कौन सी गलती करते हैं, जहाँ स्टॉप करना है वहाँ स्टॉप, वहाँ तो क्या लगा देते हैं, क्या क्योंकि मात्रा लगा देते हैं, छोटी सी गलती करते हैं, फुल स्टॉप लगाने के बजाय कॉमा लगा देते हैं। तो फुल स्टॉप माना स्टॉप, जो भी व्यर्थ है, जो भी नेगेटिव है, जहाँ हमारा पुरुषार्थ गिर रहा है, हमारी स्थिति गिर रही है, जैसे अंदर में हमारे महसूस हो कि ये हमको नहीं करना चाहिए, स्टॉप माना स्टॉप। लेकिन इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए और ये धीरे धीरे हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। नेक्स्ट है सॉन्ग, गीत सुनो, कौन से गीत, एक तो भाव वाले गीत हैं, दूसरे वो वाले गीत, वो संसार के वो गीत, कौन से, तुमसे लगन लगा बैठे अब क्या करूं, हैं, और गीत ऐसे गीत सुने जिनसे खून खोले अंदर में, हाँ, जो अंदर में जो सोई बुझी हुई अग्नि है वो थोड़ी जाग पड़े, है ना, जैसे ये दुनिया मेरे काम की नहीं, हाँ, चलते चलते। राष्ट्रभक्ति के आप गीत देखिए, जब बजते हैं 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, कैसे अंदर में आग लग जाती है। तो ऐसे गीत हमको सुनते रहने चाहिए, ऐसा नहीं हमको संसार के गीत हमको नीचे गिरा रहे हैं, उनका भाव हम कैसे ले रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ के लिए इस संसार में ऐसा नहीं कि हमारा ज्ञान ठीक है, नहीं, कहीं से भी कुछ भी मिले हमारा प्रोग्रेस होनी चाहिए, ज्ञान तो है ही है, लेकिन बाबा ने कहा तुमको हर चीज़ से सीखना है। एक छोटी सी मकड़ी में भी अकल होती है, मकोड़ी में भी अकल होती है, बाबा कितने एग्जाम्पल देते हैं संसार के, चींटी में भी अकल है। बाबा कहते तुम तो मकोड़ा भी नहीं बने अभी तक, कुछ दिन था ना मुरली में पहले, साकार मुरली में है ना, कितनी छोटी सी चींटी होती है लेकिन अपने वजन से वो कितने गुना वजन ज़्यादा उठा के चलती है, कितना गुना चलती है, 10 गुना, ठीक है अभी थोड़ा बढ़ा देना, वो तो उस टाइम था, वो जिस टाइम जिसने रिसर्च की होगी उस टाइम 10 गुना था, अभी तो बढ़ गया होगा, बहुत स्टैमिना बढ़ गया। हाँ तो सॉन्ग, और नेक्स्ट है अगला स्पिरिचुअल जिम, रूहानी ड्रिल है ना, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए कहाँ जाता है इंसान, जिम में जाता है। तो हमको भी स्पिरिचुअल जिम में रोज जाते रहना है, और स्पिरिचुअल जिम हमारा कौन सा है, 100 दर्शन चक्कर फिराओ, अर्थात 5 रूपों की ड्रिल, 5 क्या 10 रूप कर लो, वो तो बाबा ने 5 बोले, 23 रूप हो सकते हैं हमारे, कैसे कैसे 23 रूप हो सकते हैं, अब कितने सारे देवी देवता हैं, असंख्य देवी देवता हैं, कभी गणेश बन के खड़े जाओ, कभी काली बन के जीव निकाल के बाहर खड़े हो जाओ, कभी दुर्गा बन के खड़े हो जाओ, कभी संतोषी माता बन के खड़े जाओ, कितने सारे हमारे रूप हैं ये तो हमारा समय ही कम पड़ जाएगा। हाँ हाथी के सामने खड़े हो जाओ, कितने सारे हमारे रूप है, गणेश बन के खड़े हो, हनुमान बन के खड़े हो जाओ, है जी परशुराम बन के खड़े हो जाओ। हाँ जहाँ माया आती है, तो जब माया आती तो क्या सोचना, सोमान को थोड़ा चेंज करना कि मैं माया के लिए मौत बनकर अवतरित हुआ हूँ, है ना, माया की माया को फांसी का फंदा मुझे ही लगाना है, दूसरा कोई लगा नहीं सकता है, नहीं तो बाबा कहते हैं माया भी तुमको अपने फंदे में फंसा लेती है, लेकिन हमको माया को फंदा लगाना है, याद की फांसी में लटके रहो, तो माया को भी फांसी में लटका देना है ताकि वो दोबारा जीवित ना हो सके। तो ये कौन सा था, स्पिरिचुअल जिम, तो उसको अपने अपने तरीके से देखना है उसमें क्या और आगे विस्तार होता है। और लास्ट में ऐसे कौन सा ऐसा होगा भी आप बताओ, साक्षी स्टेज, और हाँ ये सारे ये भी लिखे थे लेकिन संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, और वो शक्तिशाली ऐसा एकदम संबंध, और संघ में संबंध आ गया वैसे, और संकल्प, और लास्ट वाला ऐसा स्वस्थिति, और लास्ट वाला ऐसा साइलेंस, ज्यादा झंझट में जाने का ही नहीं, एकदम साइलेंस में जाना है, क्योंकि हमारा ज्ञान वास्तव में क्या है, साइलेंस में ले जाने के लिए है, बिल्कुल डेड साइलेंस में चले जाने का है, ज़्यादा सोचने का नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद ही साइलेंस का मन करेगा। हमें अपनी देही मनी अवस्था बनानी है, नहीं तो सारा दिन हमारा देह अभिमान जो है ना बड़ा सूक्ष्म रूप से कूट कूट के अंदर भरा हुआ जाता नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है देहमान, और देही मानने की अवस्था का अगर हमको अपनी जाँच करनी है, जब भी अगर सामने से कोई भी कुछ कहता है, अगर मन में एक रति भर भी उसका संकल्प नहीं चलता है, तो समझो हमारी देही अवमानी स्थिति बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है। लेकिन अगर देह अभिमान है तो मन में बहुत सारे संकल्प चलेंगे। मान लो हमारे में गलती है नहीं और सामने वाले ने कुछ बोल दिया है, अगर संकल्प चला माना पूरा देह अभिमान भरा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी संकल्प नहीं चलता माना देही अवमानी की अवस्था में अभी प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो साइलेंस ये सबसे बड़ा हथियार है, तो हमको साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। तो साइलेंस रहना अर्थात ये नहीं है कि हमको वाचा में नहीं आना है, साइलेंस अर्थात जहां हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, समय परिस्थितियों अनुसार हमको सोच समझ के जो बोलना वो तो बोलना ही है, लेकिन साइलेंस अर्थात हम निरंतर उस दुनिया में जो हमारा असली घर है, जहां हमको वास्तव में जाना है, जिसके लिए हम सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उस साइलेंस में जाने का अभ्यास करना है, उस परम धाम को हमको स्पर्श करना है, उसको अपने अंदर समा लेना है कि सचमुच वो मेरा घर है, तो मुझको याद क्यों नहीं आ रहा है, वो उससे मेरा प्यार क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों इसी संसार की चीज़ों से प्यार बढ़ रहा है, अर्थात हमने अपने घर से अब की तरफ उस तरफ जाने का संकल्प नहीं किया है। बाबा हाथ उठाते कि अब घर जा रहा है, तो हम हाथ तो उठा देते हैं लेकिन वो कहाँ जाना है, इतनी सारी चीज़ें तो हमको बांध के रखी हैं, इतने सारे प्रलोभन तो हमको बार बार खींच रहे हैं, वो प्रलोभन ना चाहते भी हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हमारे ऊपर बलिहार हो रहे हैं, वो प्रलोभन हमको फंसा रहे हैं, तो साइलेंस में हम कहाँ जा रहे हैं। तो लास्ट वाला एस है साइलेंस। तो ये थे 12 एस, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 12 एस थे किस चीज़ के लिए, व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ स्थिति में स्थित रहने के लिए। तो सबसे पहला ऐसा कौन सा, जितना हो सके ज्ञान की संपत्ति को अर्जित करना है, करते रहना, क्योंकि ये संपत्ति बहुत अथाह संपत्ति है। अभी तक तो हमने सोचा हम सोचते 1% भी नहीं शायद अर्जित की हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको एक ज्ञान की एक ही बूंद दी है, अभी एक बूंद ही इतनी भारी पड़ रही है, बाकी पता नहीं उतना ज्ञान कितना होगा, तो बताओ हमारी यात्रा कितनी लंबी है। तो ज्ञान को हमको अर्जित करते रहना है, लिखना पढ़ना सोचना सुनना सुनाना, ये सब चीज़ें उसमें संपत्ति को अर्जित करने के तरीके हो सकते हैं। दूसरा ऐसा स्थान, कौन से स्थान पर रहते हैं, जिस स्थान में हम रहते हैं उस स्थान को भी शक्तिशाली बनाना, उसी स्थान को चारों धामों की एनर्जी उस स्थान में समा देनी है। तीसरा ऐसा संग, तो संग हम कौन सा कर रहे हैं सारे दिन में उसकी भी हमको जाँच करते रहना। चौथा ऐसा स्नेह, स्नेह में बाबा के स्नेह में डूबे रहना है, उस स्नेह में कैसे डूबना है उसके भी तरीके हमको तलाशते रहना है। पांचवा ऐसा साधना, साधना प्रचंड साधना, अखंड साधना चलती रहे। बाबा कहते तो साधना अर्थात ये नहीं कि याद में बैठ जाना, किसी भी कर्म को एकाग्रता पूर्वक पूरा सच्चे मन से तन्मयता पूर्वक करना, ये भी एक साधना है। नेक्स्ट ऐसा अर्थात सोमान में हमेशा हमको स्थित रहना है, तो नए नए सोमान तलाशने कि कौन सा नया सोमान हो सकता है। और नेक्स्ट है संगठन का बल, संगठन में रहना अति अनिवार्य है, नहीं तो अकेला आदमी धीरे धीरे खिसक भी जाता कहीं। बाबा ने कहना 15-20 वर्ष होने के बाद भी चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वापस तो आना, बेचारों को जाएंगे कहाँ, हाँ जी हटिएगी, साइट सीन करने के लिए जाते हैं, हाँ वापस तो आ ही जाएंगे। और अगला ऐसा स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप, ऐसे पहले लगाना था इसलिए स्टॉप फिर फुल, नहीं तो ऐसा आ जाता तो फुल स्टॉप। और अगला ऐसा समय, समय कौन सा चल रहा है, ये हमको जागरूक रहना कि थोड़ा सा समय आज का दिन हमारे पास है ना, शाम तक अगर पूरा काम हो गया तो जो भी काम है निपटाने ना आज ही कर लेंगे, आज ही यहीं से फ़ोन वोन करके सबको बता दो जो भी भट्टे में आए हुए हैं, तो शाम को पता नहीं होंगे यार निपट जाएंगे। तो अगला ऐसा सॉन्ग, वो शक्तिशाली गीत सुनिए जो अंदर को झकझोर दे एकदम, जो हमारी सोई चेतना एकदम जागृत आ जाए, थोड़ा अंदर में मिर्ची लगनी चाहिए आत्मा को, ऐसा नहीं मीठा खा गया हम मीठा बनते रहे, थोड़ी आग लगनी चाहिए, वाह 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 वाह। तो ये गीत की अग्नि प्रज्वलित रखनी है। अगला ऐसा स्पिरिचुअल जिम, तो जिम में हमको हमेशा अपनी एक्सरसाइज मसल मजबूत करने हैं, आत्मा के भी और शरीर का भी। संडे की मुरली में आने वाली शायद मुरली उसमें है, बार बार बीमार पड़ते हैं, ये भी आपकी अपनी गलती है, इसलिए शरीर को हेल्दी रखना भी समझदारी। बाबा ने बोला केवल आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा प्रकृति और शरीर तीनों चीज़ का, क्योंकि दो लोगों ने शरीर छोड़ दिया था उस कर्नाटक के भाई ने, आत्मा और परमात्मा और प्रकृति, तो तीनों का ज्ञान चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान चाहिए, क्योंकि प्रकृति इस प्रकृति में रह के हमको सारे काम संपन्न करने हैं। अगला है 12 हो गए, अच्छा लास्ट वाला साइलेंस, तो अभी साइलेंस में बैठ के एक मिनट बाबा की याद में संपन्न करते हैं क्लास को। ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।